गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
सचखंड की सड़क भाग पहला। इसका लेखक कौन है? हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा। सतनाम नाम भी रख दिया इनका। इस महापुरुष का जो बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल जी के पास जो उत्तराधिकारी हुआ वो सतनाम सिंह नाम था उनका। अब देखो, अब ये क्या खोलने चले हैं, ये कहां से छपी है सचखंड की सड़क, ये तो इन्होंने लिखा है और यहां से ये छपी है। प्रकाशक हैं इंद्र सेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा, भारत। और मुद्रक यहां से है इंद्र सेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, सा सतनाम सिंह मार्ग, सिरसा। ये छापने वाली हरियाणा से। इसके 226 पृष्ठ पर देखो आप, फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये एक का कुएं का जल था। ये है 226 पृष्ठ सचखंड की सड़क, और ये है एक श्लोक उसी विद्याल जी की वाणी। और खोलने चला है यो सतनाम सिंह, अलखनामी आया सारे देश छोड़ के, जी छोड़ के। यहां लिखा है कि ये त्रिलोक की, इनकी त्रिलोक की देखो के है, यहीं से पता लग जाए किसी विद्वान थे। ये कहते हैं त्रिलोक की सथूल सूक्ष्म कारण, या तो इनकी त्रिलोक की है, जबकि त्रिलोक है पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। त्रिलोक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। यहां तक तो ये सुर में बोल गए, किसी से सुन लिया है न। फिर वह इस सतलोक को बता रहे हैं कि यह सचखंड या सतलोक आदि पुरुष का या सतपुरुष का स्थान है, और वह अजर अमर अविनाशी है, सदा एक रस है। वहां चेतन्यता ही चेतन्यता है, वह यानी चेतन्यता ही चेतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। उसी को, किसको? इस सतलोक को, इस सचखंड को, उसी को सतनाम, सतशब्द और सार शब्द कहा जाता है। है ना, शिवदाल जला कुएं का पानी, सेम टू सेम। अब ये कहते हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश है। इसकी संपर्क में अब श्री सावन सिंह जी, डेरा बाबा जयमल सिंह जी के गद्दी निशीन हुए हैं श्री जयमल सिंह जी के तुरंत बाद। उसके फिर आगे दो शाखाएं होगी, एक सच्चा सौदा सरसा बलोचिस्तानी सामस्ताना उसी का शिष्य, और कृपाल सिंह जी दिल्ली में, सावन कृपाल मिशन वाला। अब उसका शिष्य हुआ दर्शन सिंह, कृपाल सिंह का। ये देखो दर्शन सिंह जी के विचार, परमात्मा का साक्षात्कार। एक पुस्तक है परमात्मा का साक्षात्कार, और ये है दर्शन सिंह। क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? संत दर्शन सिंह जी महाराज से भेंट वार्ता, सावन कृपाल पब्लिकेशंस, स्पिरिचुअल सोसाइटी, कृपाल आश्रम, संत कृपाल सिंह मार्ग, विजय नगर, दिल्ली से प्रकाशित है। तो यहां किसी ने प्रश्न किया, ये मुद्रक है इसके प्रिंटेक्स, 1/7442 ईस्ट गोरख पार्क सादरा दिल्ली से। क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? सन 1978 की प्रथम अमेरिका यात्रा के दौरान शिकागो रेडियो से प्रसारित भेंट वार्ता के आधार पर, अब देखना हो विदेशों में, प्रश्न, क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? उत्तर किसका? दर्शन सिंह का। हाँ, हम इसी जीवन में प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। आप जो बात कह रहे हैं उसका क्या प्रमाण है? अब उत्तर, जिस प्रकार से हलवे का प्रमाण उसके खाने से निहित है, उसी प्रकार आत्मिक उपलब्धि का प्रमाण उसके अनुभव में है। हम आत्म अनुभव और प्रभु का अनुभव पराविद्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि संत मत का मार्ग है। और स्वामी विवेकानंद, जिनका पूर्व नाम नरेंद्र था, ने रामकृष्ण परमहंस से एक बार पूछा, प्रभु क्या आपने परमात्मा को देखा है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटे, मैंने प्रभु को देखा है, उतनी ही स्पष्टता के साथ जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, यानी साकार होया भगवान। और ये कहते अलवा खाने से ही उसका पता चलता है, तो अलवा तो साकार है। आगे देखो, परमात्मा जब व्यक्त हुआ, अब देखना हुआ भाई, सुनते रहना, जब परमात्मा व्यक्त हुआ यानी आकार में आया, इजहार में आया, इजहार माने प्रगट साकार हुआ, तो उसने दो रूप बना लिए, धारण किए, क्या? दिव्य प्रकाश और मंडलों का राग नाद। ओए होए, एक तो भगवान जब आकार में आया तो ये दो रूप बन गया, एक तो प्रकाश बन गया और फिर ये धुन बन गया। ये कान बंद करके सुनते हैं, मंडलों का राग नाद, इन दो रूपों से संपर्क स्थापित कर न केवल हम परमात्मा को देख सकते हैं, वरन हम उससे रूबरू आमने सामने बातचीत भी कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन भी पा सकते हैं और अंत में उसमें अभेद भी हो सकते हैं, यानी उसमें जाकर के हम जैसे बूंद समुद्र में ऐसे मिल सकते हैं। और ये नौ का भगवान दिख जाएगा, प्रकाश देखो और यो नाद राग सुनो, कान बंद करके, ये डले ढुआरे थे अपना छुरी बना करके, इसे भगवान दिख जाएगा, ये इनका कहना था। और ये स्पष्ट कह रहे हो, कहते परमात्मा देखने में कैसा है? परमात्मा आकार रहित है। अरे सिर फिरो आकार रहित ने खाक देखोगे तुम, परमात्मा आकार रहित है, निराकार है। परमात्मा पूर्ण ज्योत, पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद है। ये बकवाद सारी, परमात्मा का ज्योत पुंज अवर्णनीय है, फिर भी शास्त्रों में बताया है, देख अकल इनकी, शास्त्रों में बताया कि करोड़ सूर्य और चंद्रमा का एकत्रित प्रकाश उसके एक रोम के प्रकाश के तुलना नहीं कर सकता। अरे सिर फिरो, जब रोम कूप है तो बता फिर निराकार क्यों कर रहे गए? वो तेरा गजब भैया, परमात्मा को उसके मूलभूत ज्योत स्वरूप में देखना तभी संभव है, यानी प्रकाश देखना। बस लास्ट में, जब हम रूहानियत की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंच जाएंगे, जब राधा स्वामी पंथ में पहुंच जाएंगे ना, बुक्की मां ले गई अभी, जब दिखेगी नहीं, सबसे ऊंची अवस्था इनकी। ये तो थे दर्शन सिंह यानी कृपाल सिंह जी के चेले के वचन। अब आपको दिखाते हैं कृपाल सिंह जी के वचन। ये पुस्तक है बाबा जयमल, जीवन चरित्र बाबा जयमल सिंह, जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज, और लेखक कृपाल सिंह। यह दिखाते हैं आपको, और ये सोन कृपाल सिंह पब्लिकेशन, ये यहां से छपा है, सावन कृपाल पब्लिकेशन, स्पिरिचुअल सोसाइटीज, 2 Canal Road विजयनगर दिल्ली से। ये इसके मुद्रक हैं, और ये हैं, ये शिवदयाल जी परमधनी, ये आपको पहले भी दिखाए थे। ये इनका नाम भी अंकित है। अच्छा, अब इसके 20 पृष्ठ पर ये कृपाल सिंह जी के वचन सुनाते हैं, 20 पृष्ठ पे क्या कहा, परमात्मा ने इंसान बनाए, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया, इंसान ने आगे समाज बनाए और उनको अपने रंग में रंग दिया। बता फिर निराकार क्यों करे परमात्मा, इनकी अकल देखो। परमात्मा ने इंसान बनाई, इंसान को उस प्रभु ने अपना रूप बनाया, फिर निराकार कित हो गया भगवान। अब आपको सृष्टि रचना सुनाते हैं इन महापुरुषों की, शिवदयाल जी के चेल्या की, और आनंद आ जाएंगे आपको देखना क्या बात कही। इसी पुस्तक के जीवन बाबा जयमल सिंह जी के हम प्रश्न नंबर 102-3 पर ले चलते हैं, आपको देखना सृष्टि रचना। ये है प्रश्न नंबर 103 और जीवन चरित्र बाबा जयमल सिंह जी, और हम 102 पर यहां से पढ़ेंगे। सृष्टि रचना सुनियो देखियो, हो आनंद आ जाएंगे अपने। वह प्रभु अपने निज स्वरूप में निराकार निर्गुण अनाम था। अच्छा, भगवान तो निराकार निर्गुण और उसका कोई नाम नहीं था, उसका न कोई आकार था न गुण न कोई नाम था, वो वर्णन से परे की चीज थी, नेति नेति कहकर ही उसका संकेत दिया जा सकता था, अर्थात वह प्रकाश भी नहीं। देख डायलॉग सुनियो इनके, वह प्रकाश भी नहीं अंधेरा भी नहीं, वह ध्वनि भी नहीं और मौन भी नहीं इत्यादि, बहुत बड़ी व्याख्या कर दी। वह परम सत्य अगम अगोचर अनंत और वर्णनातीत था है। कहते हैं यही सिर हकीकत सबकी सृजनहार सबकी जीवन आधार हकीकत यानी परमात्मा थी, जिसने सारी रचना की। जब वह अनामी प्रभु अभिव्यक्ति में आया यानी जब वो आकार में आया, तो अलख पहले तो भगवान ये कहे निराकार था फिर आकार बना तो क्या होया, जब वो अभिव्यक्ति में आया यानी आकार में आया तो अलख अगम और सतनाम हो गया। सतनाम ये सतलोक अगम लोक अलख लोक बन गया, ये तीन डले बन गया फिर वो भगवान, तीन पत्थर ऊपर के तीन लोक बन गया जब आकार माया, वैसे निराकार था। ये तीन निर्मल चेतन मंडल बन गया भगवान। अरे वाह, देखिए फिर पढ़ लो ना सुन लो इनकी अंग्रेजी। यही सिर हकीकत पहले तो कहते हैं वो परम सत, ये तो आपने पढ़ दिया, वो प्रकाश भी नहीं अंधेरा भी नहीं वह ध्वनि भी नहीं वह मौन भी नहीं, और के रह गया फिर बोल रहे भी नहीं बोल रहे आवाज हो रही। वह परम सत्य अगम अगोचर अनंत और वर्णनातीत है, यही सिर हकीकत जो सबकी सृजनहार जीवन आधार हकीकत यानी परमात्मा थी, जिसने सारी रचना की। और जब वह अनामी प्रभु, तो आपने पढ़ दिया ना वो तो अनामी था परमात्मा, अपने निज रूप में निराकार निर्गुण अनाम था निराकार था, इब कहते वो निराकार प्रभु को चेत अनामी कहो। जब वह अनामी यानी निराकार प्रभु अभिव्यक्ति में आया आकार आया, तो वह अलख अगम सतनाम हुआ, यह तीन निर्मल चेतन मंडल बन गया, अलख लोग अगम लोग और ये सतलोक न सतनाम कहो है तेरे सामने, फिर दवनी और ज्योत स्वरूप हो गया, यू बन गया इसका आकार। फिर वो निर्बल चेतन धारा जो नीचे आई और माया तथा तो काल की धारा रची, और जैसे जैसे चेतन की धारा और नीचे आती चली गई, चेतन अंश कम होता गया और माया दर्जे दर्जे बढ़ती चली गई। सत देश के नीचे असंग देश रचे गए, सो सारी रचना तीन मंडलों में बांटी गई, ब्रह्मंड पंड और अंड, हाय हाय, कारण सूक्ष्म और सथूल। सृष्टि ब्रह्मांड कारण, चेतन में थोड़ा सा माया कारण से, देख इनकी अकल देखो। ये क्या कहते हैं कि जब तीन चेतन मंडल में बट गए, नीचा आके तीन लोक बन गए, वो कौन कौन से, ब्रह्मांड अंड और पेंड, इनकी अकल देखो। अब इस एक ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड को ही अंड कहते हैं और पेंड शरीर को कहते हैं। अंड ब्रह्मांड पेंड और अंड ये एक ही डेफिनेशन है एक ही वस्तु की, और ये इसने तीर मंडल बताए बुद्धिहीन अपुणात्माओं। ये जो शरीर है ये इसको पेंड कहते हैं संत लैंग्वेज में, और एक ब्रह्मांड है ये अंडे जैसा है, अंडाकार एलिपिकल शेप है इसकी। इस ब्रह्मांड कहो चाहे इसे अंड कहो, ये तो ब्रह्मांड और अंड इसकी डेफिनेशन है। इसका पे इसका कोड वर्ड है अंड, और पिंड इसका और ब्रह्मांड इसका ओरिजिनल नाम है। तो जैसे हमारे शरीर में चैनल लगे हुए हैं और इसमें सब ये नीचे कमल बने हुए हैं, इनको चैनल समझो, ये एक टीवी समझो, और इसमें पूरे ब्रह्मांड के अंदर जहां जहां भी जो कुछ हो रहा है हम इस स्पेंड रूपी इस टेलीविजन में इसको देख सकते हैं। ये सारे ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप बना के इसके अंदर सभी वही व्यवस्था है। ये जितनी नाड़ियां हैं, ये जितने नदी नाले हैं, ये सारा विवरण कर रखा है महापुरुषों ने। तो इसको पेंड कहो, अंड कहो, चाहे ब्रह्मांड कहो, अंडाकार का है ये ब्रह्मांड, इसको ब्रह्मांड कहो, अंड कहो, इसी को सूक्ष्म करके फिर पेंड कहते हैं। इस पेंड में पूरे ब्रह्मांड का चित्रण है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और इसमें जो कुछ भी धुन सुनते हैं ये काल की धुन है, और ये पांचों नाम काल के इन कहते हैं मंडलांगे हैं, कौन से मंडलांगे फिर न्यारी। तो इस प्रकार ये इनकी अकल देख लो, कहते हैं यू अंड और पेंड और ब्रह्मंड कहते तीन मंडल बन गए। इस एक ही मंडल को ये तीन बताओ, तीन लोक बन गए। ये तीन लोग का इन्हें पता नहीं, तीन लोग बता दिए, यही अंड पेंड और ब्रह्मंड सूक्ष्म कारण और सथूल। तो यूं उलझ पुलझ कर रखे अपने आत्मा, इनकी जो सृष्टि रचना है या तो ऐसी है, क्या व्याख्या की है इन्होंने कि परमात्मा पहले निराकार था और फिर वो जब आकार में आया तो तीन निर्मल चेतन मंडल बन गए, आगम लोक अलख लोक सतनाम ने, सतलोक ने सतनाम कहे हैं, और धोनी बन गया और प्रकाश बन गया। या तो ऐसी सृष्टि रचना है, एक बच्चा नालायक सा था और अच्छा इंटरव्यू देने के लिए साक्षात्कार के लिए गया, किसी नौकरी जॉब के लिए साक्षात्कारकर्ता ने अधिकारी ने पूछा इंटरव्यू लेने वाले ने, क्या तूने महाभारत पढ़ा है बच्चा? अगली अंगलियां पर गोट रखे है, सारा रट रखे कि पांचों पांडवों के नाम बताओ। वो लगा बताने, बोला एक सी पी में एक ओदा बड़ा बिरा, एक ऊ तो छोटा सी, एक और सी दे एकता नाम में भूल गया। बताया कौन से का एक भीम ने छोड़ गए। इसने के बताया इंटरव्यू देने वाले ने कि एक तो भीम था, एक उसका बड़ा भाई, एक उससे छोटा था, एक और उससे एक और छोटा सी, और एक का नाम में भूल गया। तो ये तो ये सृष्टि रचना इनकी श्री शिवदयाल जी के चेल्या की, राधा स्वामी के चेल्या की। अपने आत्माओं ये डॉक्टर की जो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट दे रहा है उसके विषय में मरीज नहीं जान सकता, डॉक्टर ही बता सकता है ये इस रोग की है भी नहीं के नहीं, या ये कोई टेबलेट भी है या नहीं, वैसे कोई पाउडर गोड बांध कर दे रखा पुड़िया में। तो डॉक्टर ये दास भी डॉक्टर, और जिनको आप डॉक्टर जानते थे वो डॉक्टर नहीं थे, वो संत नहीं थे, वो असंत थे, अच्छी आत्मा थी, परमात्मा के लिए भटक रहे थे, ये काल का दूत शिवदयाल का फंस गए सारे। अच्छी अच्छी आत्माएं थी वो इसका फंस गए, क्योंकि भगवान की खोज में अच्छी आत्माएं भटकती रहती है, कोई कहीं जाती है, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई पहाड़ों पर, कोई पत्थरों पर, कीर्तन की तय जरूर परमात्मा की खोज में लगी है। परमेश्वर कहते हैं कि एक पर्वत पर्वत में फिरा, हमें बताते हैं कबीर परमेश्वर जी, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले वो सारे सब काम। अपने आत्माओं ये आपके समक्ष वर्णन हो गया राधा स्वामी पंथ के इन सारे पंथियों का। अब थोड़ा सा शिवदयाल जी को और रेगमार लगा दें, ये पांच नाम जप के इनका परम धनी का क्या हर्ष हुआ, यो भूत बना और अपनी बुक की शिष्या में यो फिर शंका समाधान करने लगा। समा के दिखाते ये देखिएगा जीवन त्रितर राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, जीवन त्रितर स्वामी जी महाराज का लेखक है इनके छोटे भाई लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा से। तो ये कहां से छपा है ये और दिखा, ये है वो शिव दयाल जी परम धनी और करो दर्शन इसके। परम हजूर पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज शिव दयाल जी, शिव दयाल जी है ये लिखा को ना। ये कहां से छपा है, राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा, मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी प्रिंटरी राधा स्वामी चैम्बर भालेज रोड आनंद। अब इसमें इन्होंने बड़ी महानता के साथ लिखा है कि इनका कोई गुरु नहीं था, क्योंकि ये परम धनी थे, इन्हें गुरु की जरूरत आवश्यकता नहीं थी। ये देखिएगा इसके जीवन चरित्र प्रश्न नंबर 27 पे ये क्या बताते हैं, चूंकि अनामी पुरुष या मालिक कुल में सर्व शक्ति और ताकत है और कुल का भंडार है और उसकी कुदरत से रचना का सब काम चल रहा है और परम संत वहां से आते हैं, वे भी वही ताकत और समर्थता लेकर आते हैं, उन में और अनामी पुरुष में जरा भर भी फर्क नहीं होता। अब इसको ये अनामी पुरुष सिद्ध करने की चेष्टा करें यहां पर, तो जब इस संसार में जीवों के उपकार वास्ते अनामी पुरुष या परम संत आन कर प्रगट होते हैं तो उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं होता, तो वे किसी को गुरु नहीं बना सकते। लिपापोती कर रहे हैं इसके, इसी वजह से अब 28 पृष्ठ पर देखिएगा स्वामी जी, इसी वजह से अब देखो स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश दिया। ये इसको परम धनी सिद्ध करने के लिए लिपापोती करी इनके चेला ने कि ये तो परम धनी थे और परम धनी जब आते हैं वो संत रूप में वो उसका ही रूप होते, वो गुरु नहीं बनाते। अरे परम धनी तो कबीर परमेश्वर थे और वो कहते हैं गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन और तीन लोग के हुए धनी गुरु अज्ञाधीन। फिर परमात्मा कहते हैं गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, कबीर साहब कहते हैं गर्भ योगेश्वर गुरु बिना ये सुखदेव और कर्ता हर की सेव सेव मन पूजा और कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए तब की नी हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ में तब जा सके सुखदेव। अब ये कहते हैं परम धनी था यू, इसने डबो दिया सारा देश और परम धनी परमात्मा कबीर देव जी थे, उन्होंने स्वयं गुरु धारण किया सिर्फ स्वामी रामानंद जी को केवल मर्यादा बनाए रखने के लिए कि आने वाले में समय में ये काल के दूतनियों का आग्रहेंगे परम धनी ने गुरु की जरूरत को ना, और कबीर साहब ने के गुरु बनाया था, इनकी जुबान बंद करने के लिए परमात्मा ने पहले ही इनके दाव पेच काट रखे हैं। हालांकि कबीर परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं आवश्यकता नहीं थी गुरु बनाने की, उन्होंने भी हमें ये दिखाने के लिए कि यहां से तुम पार गुरु बिन हो ही नहीं सकते और गुरु भी पूरा हो केवल नकली से नहीं। अब ये इसने इन्होंने गुरु बनाया नहीं, शिवदयाल जी ने पांचों नाम काल के जाप करे, दिखाता हूं आपको। आपने इनके जीवन चरित्र में पढ़ा के स्वामी जी महाराज के जो माता पिता थे शिवदयाल जी के, वो हाथरस वाले तुलसी साहेब जी संत के चेले थे और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होया करता और ये उनकी वाणी यो भी सुना करता शिवदयाल जी। अब वो इसी के सुने सुनाए इसने पांच नाम निकाल लिए, जबकि ये हाथरस वाले तुलसी साहब कहते ये तो पांचों नाम काल के हैं, इसने अपनी प्रभुता बनाने के लिए और अलग से इसने अपना नूं दिखाने के लिए मैं परम धनी हूं, इसने अपनी तरफ से न्यारा सांग जोड़ दिया अलग से मंत्र शुरू कर दिए, पांचों काल के जो ले लिए। अब देखिए घट रामायण तुलसीदास आथरस वाले के द्वारा रची गई, प्रथम भाग बेलविडियर प्रिंटिंग प्रेस वर्क्स इलाहाबाद से। ये है घट रामायण पहला भाग तुलसी साहिब आथरस वाले की रची हुई। यह ग्रंथ दो प्रमाणिक लिपियों का मिलान करके बड़ी शुद्ध सा से दो भागों में पूरा छापा गया है। अब इसके आप चलिएगा 27 पृष्ठ पे। अब भेद पिंड और ब्रह्मांड का, अंतर गुफा तहां चल जाऊं तहां साहिब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाखा और छठवा नाम गुप्त कर रख्या, पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन संका आनो। ये पांचों नाम काल के जानो, निरंकार ओंकार ज्योति निरंजन सोहम और सतनाम। कहती है पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन संका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय जो पांच बखानी। जीव नाम निज कह बिचारी, जान बुझ दानी झकमारी। अब इसमें छठा नाम और बताया, वो गुप्त कर रखा है। अब पांच नाम ये काल के, आगे बताते हैं जीव वचन। दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चल जाएं पुरुष दरबारी, सुरित नृत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। आदि नाम आयु सार नाम, और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। सतनाम ये दो अक्षर का है, कहा कि इस दो अक्षर का नाम सतनाम ये अलग से जाप करना है, इसे तो इसे जीव का उभार होगा, और सतनाम जो है ये काल ने, ये आदि नाम जो है ये काल ने कंडम करेगा, ये परमात्मा सतपुरुष का न मंत्र है। इसमें सतनाम में दो अक्षर है, एक ओम एक तत्, तत् सांकेतिक दास बताएगा। तो इसे सिद्ध हो गया ये पांचों नाम काल के जाप किया करते थे कौन, श्री शिवजाल जी उर्फ राधा स्वामी, और फिर इसकी के दुर्गति हुई इन जाप से साधना से, ये देखना। अब आपको हम फिर वहीं ले आते हैं इस जीवन त्रितर स्वामी जी महाराज पर, देखिएगा जीवन त्रितर राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, ये वो जीवन त्रितर है, लेखक वही है जो अभी आपको दिखाया था, और ये आगरा से छपा है ये, और ये यहां से मुद्रित हुआ है राधा स्वामी चैम्बर अर्पणी प्रिंटर से। और अब हम इसके, आपने पढ़ दिया इनका कोई गुरु नहीं था, अब हम आते हैं इस शिवदयाल जी की दुर्गति देखें फिर परमदनी की। 78 पृष्ठ पर जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, यहां देखना 51 नंबर प्रवचन। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता। यह सिब्बो जी के कुछ वर्षे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी, जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे, और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। इसमें बुक्की में पहले भी भूत थे, ये सत्संग सुनने वाले कि ये हाल होया करें, अंगारा सी आंख हो जाती, आंसू पड़ने लगते, उसमें पहले भी भूत बैठे थे और वाणी सुना करते थे गुरु ग्रंथ साहब की, तो वो आत्मा को रुआती है कि हम तो मर गए डूब गए कति भूत बनकर बैठ गए। तो वो नो रोए थे उस बुक्की में, पहले भी भूत थे और वह बेहोश होकर पड़ जाती। फिर कहते हैं फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, वह रे परम धनी या और कसर रह रही थी हुक्का पीने की। कबीर साहब कहते हैं अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार, कहे कबीर विचार के त्यागो तत्व विचार, तत्व को विचार करके इनको त्याग दो। भांग तमाखू छोतरा आपू और शराब, कहे कबीर कौन करे बंदगी ये तो करें खराब। ये तो बर्बाद कर देते हैं बने बनाए हलवे को। अब बने बनाए हलवे में एक मुट्ठी वालू रेत गिर दे, कई भगत कहते हैं उनके चेले क्योंकि उकेत के फर्क पड़े है, आत्मा तो निर्लेप्स है, फिर निर्लेप्स है तो बदन की क्या जरूरत है आत्मा को, वह तो निर्लेप्स है फिर। वाह भाई वाह, फर्क क्यों नहीं पड़ता, हलवा बना के एक किलो घी का और ऊपर तो बालू रेत घेर दी इतना, वो बतेरा करकरा कर दिया, सारा काम नाश कर दिया। यानी ये तो हलवा भी ना बना रहे थे, इनके पास तक कख भी नहीं था। इस सत भक्ति करते हुए यदि थोड़ा सा विकार कर दोगे तो नू कर दिया तुमने, वो बना बना काम बिगाड़ दोगे। अब ये हुक्का पीता था, पांचों नाम काल के जाप करता था, हठ योग करता था, किसी भी संत ने नहीं करे जिनको परमात्मा पाया, तो ये इनकी फिर दुरुक्ति होनी थी। अब देखो आगे चलते हैं इसी शिवदयाल जी के जीवन चरित्र पर। हम यहाँ 78 पृष्ठ पर पढ़ते हुए नीचे आ गए हैं। यहाँ पर स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने बैठते थे तो मुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुख में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी, और जब कोई मत्था टेकने वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ। अब ये राधा स्वामी वाले भोले श्रद्धालु दंत कथा सुनाते हैं कि परम संत की एक पहचान है कि वो चरण नहीं छुआता, मत्था नहीं टिकवाता, क्योंकि वो 1 किलोमीटर दूर बैठे हैं वर्तमान वाले थे। अरे यू आपका परम धनी तो मत्था टिकवाया करता, बता भाई फिर यू तक संत नहीं था, तुम्हारे ही विधान अनुसार वैसे तो था ही नहीं संत। और वह बयान किया करती कि मुझे इसमें रस आता है जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती, बेहोश होकर पड़ जाती या भूत थे इसमें लेकर लौट जाते। इसने इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था, और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। दास ना सियावन की बात ऊंचा देश कौन सा, राधा स्वामी पहुंचा रहती है, राधा स्वामी शिव जाल में। इनकी न किसी मंजिल का पता नहीं, सतनाम का ये पता नहीं, सतनाम सचखंड सतलोक सतपुरुष सतनाम सारसनाम है, और ये पहुंचे ऊंची मंजिल की बात करें। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए यानी मृत्यु होगी शिव जाल की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी, और दो दो दिन हाजत जरूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, करनी जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब पृष्ठ 80 पर आ गए हम। करीब 1.5 महीने के ये हाल रहा, सबको खौफ हो गया, डर हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो, और फिर उसी रोज से बुक्की रोज भोग भी तैयार करती थी, और मेरे पन्नी गली वाले मकान में पहले की दस्तूर से माप के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी, वह पलंग अभी तक बिछा रहता है, और गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी, और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रकट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जैसे अंतर ध्यान होने के पेशतर करते थे। अब सुनो इनकी अंग्रेजी दास समझे तुम नहीं समझ सकते, शायद आपका ना समझ में आपका होती तो पहले आले हो या, क्योंकि 150 साल होगी सड़ंगे पढ़त्या ने और इसको परम धनी मानत्या ने। इसका स्पष्ट किया है कि जब वो बुक्की जी में प्रवेश हो गया और वो उसने कहा कि अब हुक्का भरो खाना बनाओ, अब बुक्की खुद रोटी बनाती हुक्का भरती, और वो लेखक जो श्री शिवदयाल जी का छोटा भाई था प्रताप सिंह सेठ, वो कहता है मेरे पन्नी वाली गली के पलंग में जहां इनका जन्म हुआ था शिवदयाल जी का, वो फिर छोटे भाई का बाटा गया होगा, कहता वो पलंग अब भी बिछा हुआ है और उस पर बुक्की खाना बना के वो काबर के और पलंग पर बैठ के और फिर वह रोटी खाता हो शिवदयाल, बुक्की खाती हुआ बुक्की में बैठा था वो और ओक्का पीता, फिर गुरुड़ गुरुड़ वह बुक्की पहले ओक्का भी ना पिया करते, वो शिवदयाल आ गया फिर ओक्का पीने लग गई। अब देखो आगे और सुनाते हैं कि इस लेखक कहता है कि कई बार मेरे ऊपर कोई ऐसी भीड़ आ जाती थी, कोई प्रॉब्लम आ जाती थी संसारिक, कोई व्यवसाय में घाटा हो जाता था, तो बुक्की के सामने जाके बुक्की के दरफ्यात बुक्की के माध्यम से और शिवदयाल जी यानी परम धनी के हुक्म लिया करता था, और जो आदेश होता उसकी तरह फिर काम करता था। बुक्की में फिर इंटरनेट लाग गया, दुब जावा उन कर लिया फिर उसने। अब दिखाता हूं, अब देखिएगा, अब हम 80 पर पढ़ते पढ़ते यहां आगे हैं कि देखिएगा, तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उस रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती, खाना बनाती, और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, उक्का भरती शिवजी शिवदयाल के लिए, और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेस्तर सेवा किया करती थी पहले, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे जिस तरह अंतर ध्यान उन्हें के पेस्तर पर फरमाते थे, पेस्तर करते थे। यानी ओक्का पीण लाग गए, बुक्की में था वो, और खाना खाओ पलंग पर बैठ के उगड़ू होके आ गया, पहुंच गया अनामी लोक में। अब आगे देखो, बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, वह मरी इतने उस समय रहे बुक्की लोक में। ये तो आपके समक्ष है पुण्यात्मा, दास अपनी तरफ से नहीं बना रहा, कितने जीव बर्बाद कर दिए इस बोली आत्मा ने। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, उसके अंदर रहे, यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरफ्यात किया कर लिया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लाग गया, जाते खोल लेते फिर उसको, ये भूत बैठ गया आकाश में। यानी बुक्की जी अभ्यास में स्वामी जी महाराज को प्रगट करके हम कमाल हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय पर घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था, इंटरनेट खोल लिया करता यू भी जाकर उसमें, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुताबिक बंदा कारबंद होता था। और इसी तरह से राय साहब ने, ये जो और एक इनका पर था राय साहब संत था वो, उनका चेला शिवदयाल का, ने भी मौज की थी बुक्की के जरिए से, दो चार बार हुक्म हासिल किए थे, बस सारा जीवन में दो ही चार भाई। अब ये है पुण्यात्माओं, इनका सारा सांग दिखा दिया थारे सामने, इनको नी वस्त्र कर दिया इन परम धनियों को, ये सत्कर मान लियो। अब विचार करो पुण्यात्मा, जो साधना साधक करते हैं, एक लाखों शिष्य हैं उनके, और उनमें एक बुक्की पाई जिसमें भगवान बोल रहा था, या सारे फिर उसका आगे लाइन लगा के खड़े हो जाना चाहिए था, जो भगवान आ गया था उसमें, वो प्रेत बना क्योंकि साधना सारी गलत, वो कापी वे हठ योग कराया और सारा काम बिगाड़ के चला गया, और उसको परम धनी मान के ये सारे भोली आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि जैसे दीपक पर पतंग गिर जाते हैं उसको शीतल और सुंदर वस्तु जान के, ऐसे इन काल के दूतों के ऊपर ये भोली आत्माएं जाकर उन पर समर्पित हो जाती, अपना जीवन उस पतंग की तरह नष्ट कर जाते हैं, जैसे वो दीपक को एक अच्छा शीतल और सुंदर वस्तु जानकर उसके चिपकते ही मर गया। तो ये लाखों करोड़ों जीव बर्बाद कर गया, यू एक शिवदयाल काल का दूत था। अब परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो, और सच्चे को ये मानते नहीं, झूठा जगपति आई हो। अपने आत्माओं, जो सतनाम केवल कुछ चंद पुण्यात्माओं को प्राप्त हुआ था, और उनके विषय में वेद कहता है कि वो परम श्रेष्ठ बहुत महान आत्मा होती हैं जिनको भगवान आकर मिलता है, और उनको उपदेश करता है। और उनको परमात्मा उसमें मना कर गया था कि मेरा और काल का भाई एक प्रॉमिस हो रहा है, एग्रीमेंट है कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। और अभी ये कलयुग का प्रारंभ है, जब परमात्मा आए कबीर परमेश्वर जी और उसी समय नानक साहिब जी उनके समकालीन थे। सन 1398 से सन 1518 तक परमेश्वर यहां रहे अतिथि की तरह, सह शरीर आए थे शिशु रूप धारण करके, सह शरीर मगर से चले गए थे लाखों व्यक्तियों के सामने, उनका शव नहीं मिला था, शरीर नहीं मिला था, सुगंधित फूल मिले थे। और आदरणीय नानक साहिब जी का जन्म हुआ सन 1469 में, और कबीर परमेश्वर जी समझो 1398 से और 1518 तक, यानी 1469 से लेकर 1518 तक परमेश्वर कबीर देव जी और नानक साहिब जी समकालीन थे। तो इन महापुरुषों को परमात्मा ने सतनाम बताया और कहा कि अभी तुम इसको कहीं सार्वजनिक नहीं करना, ये सत्कर्मान लेना। आपने कल नानक साहिब जी की जन्म साखी में जो कि सबसे एथेंटिक मानी जाती है, इनके बाला और मर्दाना के द्वारा कानों सुनी ही उसमें लिखी गई है, उसमें स्पष्ट देखा कि परमात्मा के पास ये गए सतपुरुष के पास, प्रकाश ही प्रकाश है, क्योंकि वो लोक तेजो में है, वो जो सतलोक है वो बहुत तेजो में प्रकाश में है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र 32 में कहा कि वो सवर ज्योति रित दामा कबीर अंगारी बम्भारी असी, वो कबीर परमात्मा बंधनों का शत्रु बंदी छोड़, पापों का नाश करने वाला पापों का शत्रु पाप नाशक, और सवर ज्योति रित धामा जो स्वयं प्रकाशित सतलोक रहे उसमें रहने वाला सतलोक में। और वही नानक साहब जी कहते हैं कि वहां प्रकाश ही था, बहुत प्रकाश है, उस प्रकाश में भगवान विष्णु बैठे हैं। विष्णु भगवान ये त्रिलोकी विष्णु का तो संतों के मार्ग में रोलना खत्म हो जाता है। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि अग्नि तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी, विष्णु माने सबके पालन पोषण करने वाला। गीताजी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि ऊर्ध्व मूलम अध्य शाखम, ऊपर को जड़ वाला नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, यानी उस मूल से। और गीताजी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सर्वपुरुष अक्षर पुरुष, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में 16वें श्लोक में कहा है कि ये तो नाशवान है और इनके अंतर्गत जितने प्राणी है वो भी नाशवान है, इनकी जीवात्मा किसी की नहीं मरती है। अब जैसे पेड़ को जड़ से खुराक मिलती है, आहार मिलता है, तो इस पेड़ का विष्णु जड़ है, पेड़ का जो विष्णु है पालनहार वो मूल है। ऐसे 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो सही भगवान श्रेष्ठ पुरुष तो इन सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, वो कौन है। गीताजी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा परमात्मा आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत्परम और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान और सब कर्मों से परिचित होने के बाद कहा कि वो प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की चाह नहीं रहती, तो किम तत्परम 8वें अध्याय के 1 श्लोक में पूछा, वो तत्परम क्या है, उत्तर दिया 3रे श्लोक में गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म को चाहे परम अक्षर पुरुष को उसकी महिमा है, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम अविश्य विवर्ति अवे ईश्वर है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो विष्णु जो मूल परमात्मा है वो विष्णु है, वो धारण पोषण करता वास्तव में विष्णु वो है। इब आगे विष्णु बने रहो, कोई भी जैसे टहनी को खुराक मिली कहां से, मूल से, और टैनी कहलाके फल। वो फल टैनी ने दिए, लेकिन वो विष्णु नहीं, विष्णु तो उसका भी विष्णु है, वो जड़ है। तो ऐसे हमने आगे चलना। तो यहां नानक साहब जी ने कहा कि वहां भगवान विष्णु विराजमान थे, लेकिन इन्होंने न्योना कहा लक्ष्मी भी विराजमान थी। अब संतों के कोड वर्ड दास समझ सकता, तुम अब बालक को आप नहीं समझ सकते। और उसके आगे फिर देवता इंद्र जैसे हाथ जोड़े खड़े परमात्मा ने लिखा गरीबदास जी ने अपनी वाणी में के सतलोक में यहां के कोटे कृष्ण करें करीला धन तू सर्जन हारे, इसे इसे यहां के सतर के इंद्र अंदर देवता जैसे थे, लाखों करोड़ों हंस हैं, तो वो थे वहां पर। तो कहने का भाव ये है परमात्मा कि वहां पर प्रकाश बताया और साथ में फिर भगवान बताया। तो उस तेजो में लोक है और उसमें परमात्मा वही तेजो में रूप में और वहां विराजमान है साकार रूप में, और ये बताओ निराकार रूप में और सतनाम। तो उस परमात्मा ने नानक साहेब जी बता रहे हैं कि मेरे को स्पष्ट आदेश दिया था कि सतनाम को के उपदेश के लिए जो भेजा है उन्हीं को बताना। तो ये कह रहे थे आपका जो आज्ञा होगी उन्हीं को सतनाम का प्रकाश करूंगा, नहीं तो कति नहीं करूं। परमात्मा का आदेश हो गया था, फिर धर्मदास मोरी लाख दुआई, अब ये मूल ज्ञान की दबार ना जाए। मूल ज्ञान में ये सारा प्रोसेस आ जाता है, और यू ज्ञान जो दास बता रहे, तो इसलिए संतों ने अपनी वाणी में बोल दिया सारा का सारा। और संतों की वाणी समझना, वेद भी आसान है इनकी वाणी के सामने, वेद तो कुछ भी नहीं है। आपके सामने गीता जी दास ने अनुवाद करके दिखा दिया, पहली का कैदा हो गया आपके लिए। और संतों की वाणी नहीं समझ सकते आप अभी भी, ये तो वो खजाना है जो वहां दुर्गा देखा हुआ उन्होंने, तो उसको ये दास ही आपको रह रहकर समझाएगा। तो उन्होंने कोड वर्डों में लिख दिया जानबूझकर। अब जैसे जब वो समुद्र के ऊपर चल रहे थे मर्दाना और बालाजी, नानक साहब ने न्यो भी दिखाना था कि हम इस नाम से मोक्ष हुआ मेरा, वो सतनाम का दो अक्षर का मंत्र बोल बोल कर जाप करने लगे ना, तो सांस से सिमन करना बोलना था ही नहीं। और मर्दाना ने नकल कर ली, उसको ऐसा झटका लग गया वो डूब गया होता मर गया होता। तो नानक साहब ने कहा कि खबरदार जो जाप किया, हम कहें वो करो तुम ये नकल मत करो, ये झटका देना जरूरी था, परमात्मा का आदेश है। धर्मदास मोरी लाख दुआई, लाख दुआई, देख भगवान ने हाथ जोड़ के कहूं भाई दया करियो मेरे पे, इसने बताइयो ना किसी थे, जय तुमने यो मंत्र बता दिया हो तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरी पुणात्मा, आपके लिए दया करियो उन महापुरुषों ने, आपको ज्ञान भी देगे रास्ता भी बतागे। जैसे गुरु नानक देव जी आए थे और भी संत आए थे, उन्होंने वाणी का पाठ और धर्म यज्ञ शुरू करा दिए। ये समझो ग्लूकोज लगा दी एक मरीज के, और ग्लूकोज रोग नहीं काट सकता, और सर्जन बिना ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो ये अब ये दास भेजा सर्जन, अभी तक इस मानव समाज के ग्लूकोज लागे महापुरुष, वाणी पढ़ते रहे, धर्म यज्ञ हो गया, ज्ञान ये करते रहे, इनसे मनुष्य जीवन मिलता रहा, मोक्ष नहीं हो सकता था और कर्म का दंड भी भोगता ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने किया था कि अगर हमने यू बता दिया काल के दूता का हाथ लग जाएगा, और ये भी यही नाम देवेंगे, इनके पास ये अधिकारी है ही नहीं, अधिकारी के बिना यू मंत्र कति काम नहीं करते, कोई आप देता रही इस दास से प्राप्त करके यदि कोई नाम दान करता है वो महादुष्ट है और नाशक है समाज का, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, एक अनधिकारी से बनाया हुआ डुप्लीकेट लाइसेंस या पासपोर्ट वहां पहचाना जाएगा जहां पर इसकी जांच होती है, और वहां फिर वह तो बहुत देर हो चुकी होगी, लुट चुका होगा वो प्राणी, सब कुछ बेच ब्याज कर खोज कर जब स्वदेश आता है तो सारा पैसा लालू करो वापिस आने की तैयारी करता है। तो पुणात्माओं ये समागम जो चल रहा है ये वो समागम है उस उपलक्ष्य में है कि परमात्मा आए थे और इन महापुरुषों को मिले थे, उनमें से एक है आदरणीय गरीबदास साहिब जी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, उन्होंने क्या बताया है, मत दे दी है बाल याने नू, मत दे दी है बाल याने नू, मत दे दी। मैं तो दे दी है बाल मयाने नू, मैं तो दे दी है बाल मयाने नू, मैं तो दे दी है बाल मयाने नू, मैं तो दे दी है बाल मयाने। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी क्या करो बरसाने नू, तो दे दी है बाल मयाने नू, मत दे दी है बाल मयाने नू। गरीबदास साहिब जी कहते हैं आत्मा रोती है जब इसको पता लग जाता है कि हे परमात्मा मैं अपनी गलती से यहाँ फंस गई और इस काल का बंदगी का से मेरा इस मन से मेरा विवाह कर दिया इस काल से, और ये अनजान है सारी उल्टे काम करे अच्छे काम में रुचि नहीं, और इसी के वश होकर ये साधु संत क्या करते हैं, बोली आत्मा गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझे शब्द ठिकाने नू। ओए होए हे परमात्मा, एक एक वाणी माल की ऐसी अनमोल है, गुड़ रहस्य से भरी पड़ी है, जैसे आप जी जैसे हम हमारा जो जन्म पवित्र हिंदू धर्म हुआ, हम बचपन से ही गीता जी का पाठ करते थे, गीता जी को सिरोधार्य करते थे और जाप राधे कृष्ण हरे राम, राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, और जाप ये कराया करते। जबकि गीता जी में कहीं भी ये मंत्र नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता में दो परमात्माओं का विशेष रोल है, दो पुरुषों का, एक सर्वपुरुष का एक परम अक्षर पुरुष का, जिसको संतों ने पार ब्रह्म कहा है। सर्वपुरुष ये कहता है ब्रह्म आठवें अध्याय के तेरहवें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदम देहम से याति परमाम गति में, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और इस एक अक्षर ओम मंत्र है एक अक्षर का और कुछ नहीं, इसका जाप करने वाला ओम से मिलने वाली परम गति प्राप्त करेगा, वो ब्रह्म लोक है, ब्रह्म लोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं। ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि चौथे अध्याय के पांच और नौ श्लोक में, दूसरे अध्याय के बारहवें श्लोक में, दसवें के दो श्लोक में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, इसी इसकी साधना ब्रह्म की साधना करने भी व्यर्थ, जन्म मृत्यु बेटी नहीं। फिर यह स्पष्ट कर रहा है अठारहवें अध्याय के बैसठवें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सातवें अध्याय के अठारहवें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली घटिया अनुत्तम गति में स्थित है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना मेरी मिट्टे ना तेरी मिट्टे। और पंद्रहवें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी भाग बता दे, सारा तत्व ज्ञान समझा दे, उसके बाद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते, उसके लिए परमात्मा बताते हैं। वो गीता ज्ञानदाता कहता उसका मंत्र वो तत्वदर्शी संत बताओगे, चौथे अध्याय के चौतीसवें श्लोक में कहा है, और फिर बताया है कि सत्रहवें अध्याय के तेईसवें श्लोक में कि तत्वदर्शी संत बताओगे उस परमात्मा का के जाप का केवल ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ, ब्रह्मणे माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, सचिदानंद घन ब्रह्म का, जो तीन अक्षर का नाम है। ओम तो ब्रह्म का, सर्वपुरुष का, पंद्रहवें अध्याय के 16-17 में जो तीन पुरुष बताए हैं उनके मंत्र हैं, उनकी साधना है, ये पूजा नहीं है। जैसे हम हैंडपंप लगाते हैं, हम पूजा तो करते हैं जल की, उसका पाना चाहते हैं उसको, पूज्य चीज को, और वो है मेहनत मजदूरी। तो ये तीनों मंत्र मजदूरी है या पूजा नहीं है या साधना है। तो कहते हैं ओम तत्सत, ओम तो ये सर्वपुरुष ब्रह्म का सार्वजनिक है, और तत् और सत ये कोड वर्ड है, सांकेतिक है। यो तत् इस अक्षर पुरुष का, यो ओम और तत् दोनों मिलकर के ये सतनाम बनता है दो अक्षर का। और इस सतनाम के जाप के बाद जब आपकी खूब कमाई हो जाएगी, सारनाम दिया जाएगा। ये समझो सतनाम काम करता हैंडपंप को पानी तक पहुंचाने का, उस पाइप को, और मशीन ऊपर लगाई जाएगी, उस सारनाम है। जब तक आपकी पाइप जल तक नहीं पहुंचेगी, मिस्त्री हैंडपंप नहीं लगाया करता, चाहे कोई जल्दी करो चाहे देर करो, क्यों, यूजलेस है, फायदा क्या, और वो की मारो भाई और मारो। तो ऐसे ही सतनाम की कमाई जब आपकी हो जाएगी पुदात, बहुत तुरंत देगा। अब तो दास, क्योंकि आपकी इतनी कमाई नहीं हो पाती, अभी भ्रमित है, तो आप यहां से जाते हो एक घर में तीन विरोधी पाओगे आपके, पड़ोस में भी, रिश्तेदारी में भी, तो आपका ढंग से माइंड जो ना सेट नहीं हो पा रहा। अरे 5-4 वर्ष में देख लेना पुणात्मा, सब पूरे समाज में एक व्यवस्था हो जाएगी, 90% आपका विरोध खत्म हो जाएगा, और फिर आपको ये मंत्र दिया करेंगे। ये नहीं सतनाम का कोई फिक्स टाइम है, 4 साल में देंगे, 5 वर्ष में देंगे, 6 वर्ष में देंगे, नहीं। सन 1999 से 99 के 94 के और 95 तक के नाम लिए, इतनी सतना सारनाम नहीं मिला उनको, और 2000 वालों को मिल लिया 2004 में 5 में। ये कोई वो नहीं है, ये तो फिर वो देखा जाएगा किसकी पाइप पहुंच गई पानी के, जल के पास। तो आगे आने वाले समय में कई भक्तों को शंका हो जाती है कि सतनाम भी मिल गया तो ठीक हो गया, फिर सारनाम तो इन्हों को 6-6 साल में मिल रहा है, नहीं, अब 4 महीने के बाद तो सतनाम, और फिर 1 साल के अंदर आपको सारनाम दिया करके, साल के भीतर भीतर आपकी इतनी कमाई होने लग जाएगी। आपकी इतनी कमाई 1 वर्ष में हो जाया करेगी, 1.5 वर्ष में घटित गणी, और फिर देखना मिनटा पार होंगे। तो यहां बताते हैं, मत दे दी है बाल में याने नू, मत दे दी है बाल में याने नू, मत दे दी। गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझ शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बुझ शब्द ठिकाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी फिर क्या करो बरसाने नू, मैं तो दे दी। कहते हैं गीता पढ़े और भागवत पढ़े, गीता में नाम है गीता ही, हरे राम कृष्ण राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, और उस शब्द ठिकाने नु यानी सही मंत्र की तरफ तो ध्यान नहीं देते, मनमाना आचरण करते, मनमाने जाप करते हैं, नष्ट हो गए जीवन भोली आत्माओं के। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उसको ना तो सुख हो, ना उसकी गति हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात यूजलेस।